अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। सांबा स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान राहत खान। स्टूडियो में मेरे साथ साथी मेजबान मौजूद हैं नोमान खान,
सलाम कबूल कीजिए।
और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है सीनियर तजिया का स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एहतशामुल हक साहब।
शुक्रिया राहत और नुमान, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां तक हमारे भाई बहन हमारी आवाज सुन रहे हैं, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
आइए सामिन आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। श्रीलंका शदीद मुश्किल में, एशेज टेस्ट सीरीज सनसनीखेज मोड़ पर, कायदे आजम ट्रॉफी आसिफ कमबैक, पाकिस्तानी अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान, वेस्ट इंडीज स्क्वाड का ऐलान। और आज सेगमेंट आपके लिए पेश किया जाएगा टॉप 10। जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है सभी सामिन को स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। यकीनन प्रोग्राम के आगाज में ही आपको इंतजार होता है आज के चैलेंज क्वेश्चन का, जो नुमान खान आप लोगों के सामने रखते हैं। तो बढ़ते हैं नुमान खान की जानिब और पूछते हैं आज का मुश्किल सा सवाल।
जी सामिन, आज का सवाल हमने वनडे क्रिकेट के हवाले से चुना है। और जी वनडे क्रिकेट में यूं तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते भी हैं। एक रिकॉर्ड हम आपसे आज पूछने जा रहे हैं और बताना आपने यह है कि वनडे क्रिकेट का वो कौन सा कैप्टन है जिसने बैट कैरी का एजाज हासिल किया। वनडे क्रिकेट में वो कौन सा कैप्टन है जिसने बैट कैरी का एजाज अपने नाम के साथ जोड़ा। इस कैप्टन का नाम आपने हम तक पहुंचाना है।
जी हाँ, और आपने इस सवाल का जवाब यानी कि इस चैलेंज क्वेश्चन का जवाब आपने हम तक पहुंचाना है। इन नंबर्स पर आपके और हमारे रابطے के नंबर 0519153779215378 9215379920577 यानी कि 0519215378 9215379 और 9205770 चारों टेलीफोन लाइन सामिन आपके लिए ओपन कर दी गई हैं। नजरें जमी है एशेज सीरीज पर, इंग्लैंड को जो है आज चौथा दिन है जी। देखते हैं कि कौन बाजी जो है वो लेकर जाता है। बड़ा ही सनसनीखेज मोड़ पर मैच जो है वो पहुंच चुका है। तफसीलात जो है वो जानते हैं नुमान खान से। नुमान खान बताइएगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर अभी देखने में आ रहा है और एशेज सीरीज पर सभी की निगाहें जमी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है आपको?
राहत, ये मैच जो है वो सीसा बैटल की तरह हमें दिखाई दे रहा है। और अब तक की जो आखिरी इस मैच की जो इत्तला हम तक पहुंची हैं, इंग्लैंड को जी 178 रन बनाने हैं, मजीद 6 विकेट उनके हाथ में हैं। 354 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया है इंग्लैंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की, जैसा कि कल मैं एहतशाम साहब से ये बात कर रहा था, उन्होंने भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में हमें यही चीज बताई थी कि अगर इंग्लैंड ने कम बैक करना है मैच में तो ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसे टोटल पे आउट करना होगा कि जो उनके लिए भी कुछ अचीवेबल हो। तो यही चीज जो थी वो फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स में देखी। ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग्स क्लोज हुई जी 138 ऑल आउट और फुल मार्क्स टू जिमी एंडरसन, 43 रन देकर 5 विकेट उन्होंने हासिल की, और क्रिस वॉक्स की 36 रन देकर 4 विकेटें। इन दो की वजह से ही जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है, जिसे हम कहते हैं कि एंडरसन स्पेशल हम कहेंगे इस टेस्ट में, जो हमें देखने को मिला। और हम बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स जो थी वो उसमें जो हाईएस्ट टोटल रहा है जी वो 20 रन ही हैं जो कि दो खिलाड़ियों ने स्कोर किए, उस्मान ख्वाजा और मिचेल स्टार्क ने। और उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की हम देखें कोई भी ऐसा बैट्समैन हमें नजर नहीं आता कि जिसने कुछ थोड़ी सी मुजाहमत जो है वो जिमी एंडरसन के इस जबरदस्त स्विंग बॉलिंग के सामने की हो। काफी ज्यादा जिसे हम कहते हैं पुअर स्कोर कार्ड हमें दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया का। 138 रन पर जाने की वजह से 354 रन का हदफ इंग्लैंड की टीम को मिला और सेकेंड इनिंग इंग्लैंड की जो हम कहते हैं जारी है। 176 पर 4 विकेटें इंग्लैंड की गिर चुकी हैं, मजीद 178 रन बनाना है, 6 विकेट उनके हाथ में हैं। इत्तेशाम साहब, माहिराना राय आपकी जानना चाहेंगे।
स्टिल मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया के चांसेस नोमान बहुत ब्राइट हैं, क्योंकि चार जो मेन बैट्समैन हैं वो इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं। सारा दारोमदार जो है वो जो रूट पर है, वोक्स पर है, मोइन अली है और देन किसी हद तक स्टुअर्ट ब्रॉड भी अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखता है। तो ओवरऑल जिस तरह राहत ने बात की, नोमान ने बात की, मैच बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पर है और अगर इंग्लैंड की जानिब से जो रूट सरवाइव करते हैं और कल का पहला सेशन भी जो रूट सरवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन फिर इंग्लैंड की टीम को थोड़ा सा एज मिल जाएगा। बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, बहुत दिलचस्प ये टेस्ट मैच हो रहा है, रियल टेस्ट मैच हो रहा है, आसाब का भी टेस्ट हो रहा है, नर्व्स का भी टेस्ट हो रहा है कि जो टीम मजबूत आसाब के साथ खेलेगी उसके जीतने के चांसेस हैं। ओवरऑल मैं समझता हूं कि 178 रन जो चाहिए इंग्लैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए और उसके 6 खिलाड़ी बाकी हैं, इंग्लैंड की टीम के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अभी इस टेस्ट मैच में वक्त खासा बाकी है। लेकिन आज नोमान और राहत मैं मैच देख रहा था, बहुत मैं इंजॉय कर रहा था स्पेशली जो रूट की बैटिंग को और जिस तरह उसने मिचेल स्टार्क की गेंद पर कट शॉट खेली और अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की। जबरदस्त उसने कट शॉट खेली थी, रोलिंग शॉट उसने खेली थी जिसकी अशद जरूरत थी। और मिचेल स्टार्क जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है उसमें सबसे ज्यादा तेज तरीन गेंद करने वाला बॉलर जो है वो मिचेल स्टार्क है। कमिंस भी कम नहीं है, कमिंग्स भी 140-145 के हिसाब से गेंद करता है, हेजलवुड भी ऑलमोस्ट 140-138-145 के हिसाब से गेंद करता है। तो दोनों टीम्स का जो बॉलिंग का डिपार्टमेंट है तकरीबन हम पल्ला है, बैलेंस्ड है। लेकिन फर्क जो मैं देख रहा हूं कि एलेस्टर कुक से रन्स नहीं हुए, 4 इनिंग्स उसने खेल ली है, उसने कोई इम्प्रेसिव बैटिंग की नहीं है। वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का मेन स्टे है, मेन होप है वो और जो रूट। और जो रूट ने इससे पहले भी एक निस सेंचुरी बनाई थी, आज भी उसने निस सेंचुरी स्कोर की और वो क्रीज पर मौजूद है। तो अगर इंग्लैंड की टीम ने ये मैच जीतना है, और यू नेवर नो कि इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत भी जाए, तो जो रूट को फिनिश करना होगा, जो रूट को एक कप्तान की इनिंग्स खेलनी होगी। बड़ी जिम्मेदाराना उसने बैटिंग की है, कोई रिस्की शॉट जो रूट ने नहीं खेला। मैं सुबह से ये सारा मैच देख रहा था, बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ जो रूट की बैटिंग से। और दूसरा जो ऑस्ट्रेलियन स्किपर है, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उसने दोनों रिव्यूज अपने गंवा दिए।
जी बहुत ही खूबसूरती से एशेज सीरीज का हाल जो है वो श्यामुल हक साहब हमें बता रहे थे, लेकिन स्टूडियो की घड़ी भी हमें कुछ बता रही है कि शॉर्ट ब्रेक का टाइम है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलावामी खबरें और उन पर तजिए, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ। اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس ورلڈ آپ سن رہے ہیں، اپنی میزبان راحت خان اور نعمان خان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر تجزیہ کار، سپورٹس ایکسپرٹ احتشام الحق صاحب، جن سے ایشز سیریز کے حوالے سے جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا بریک سے پہلے، وہیں سے ہم جوڑیں گے۔ احتشام صاحب، ایشز سیریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے بتایا کہ آسٹریلیا جو ہے ابھی اسٹرانگ ٹیم جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ بارش کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر بارش وہاں پہ مطلب برس گئی تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟
نعمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی احتشام صاحب، میں جیمی اینڈرسن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور آپ سے، اور جوئے روٹ، کیونکہ اب جیمی اینڈرسن کا سب سے بڑا ہدف جوئے روٹ ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ 3 سلپوں کے ساتھ اگر اٹیکنگ کرکٹ لیں اور اینڈرسن جو ہیں وہ ان پر کسی طریقے،
اینڈرسن انگلینڈ کا بالر ہے اور اینڈرسن نے بہت عمدہ بالنگ کی۔
جی بالکل، مچل سٹارک کا بات کرنا چاہ رہے تھے، اور
مجھے لگ رہا ہے کہ میچ کے سحر میں آپ اتنے گم ہوئے ہیں۔ اور جو راحت نے بات کی ہے کہ اگر وہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر میچ کا مزہ کرکرا ضرور ہو جائے گا۔
بالکل،
لیکن جب ہیوی ایٹماسفیئر ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، تو وہاں پر راحت اور نعمان گیند بہت موو کرتا ہے۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈرسن نے گیند کو بڑا موو کیا ہے، ووکس بڑا نپی بالر ہے، بڑا اچھا ان کا بالر ہے، 4 اس نے آؤٹ کیے، 5 اینڈرسن نے آؤٹ کیے۔ تو انگلینڈ کے جو بالرز ہیں انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب انگلینڈ کے جو بیٹسمین ہیں وہ کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں، جس طرح جو روٹ بیٹنگ کر رہا ہے، ووکس اس کے ساتھ ہے، موئن علی ہے، دین اسٹوئرٹ براڈ بھی کسی حد تک ہے، اوورٹن ہے، تو ان کے پاس بھی اچھی خاصی بیک اپ میں پلیئرز موجود ہیں۔ لیکن یہ پریشر میچ ہے، کیونکہ ویسے بھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی، میں آن ایئر بتایا دیتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ راحت نے کہا کہ بہت بڑی بڑی اسکرینز جو ہے لوگوں نے اپنے محلوں میں لگائی ہوئی اور وہاں پر لوگ ایشیز سیریز دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ایشیز سیریز کا جنون پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہر شخص جو ہے، یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو گلیاں سنسان اور سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، ایشیز سیریز کو بھی لوگ بہت انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ریئل کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں انڈیا پاکستان کا تو میچ ہوتا نہیں ہے۔ تو ایشیز سیریز جب انگلینڈ ورسز آسٹریلیا ہوتی ہے تو یقیناً بہت زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں 178 رنز یہ آسان ٹارگیٹ نہیں ہے، مشکل ٹارگیٹ ہے، دوسری نئی گیند بھی ڈیو ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں جو سارے فیکٹر ذہن میں رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر ایک بھی پارٹنرشپ نعمان اور راحت 70-80 رنز یا 100 رنز کی بن جاتی ہے تو پھر آسٹریلیا کی ٹیم بیک فٹ پر آ جائے گی، اور اگر، کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں، کل کے پروگرام میں ہم پھر بات کریں گے، अगर ये मैच इंग्लैंड की टीम जीत जाती है, सीरीज एक एक से लेवल हो जाएगी, फिर आप इस सीरीज की हाइप देखेंगे क्या बनेगी। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड की टीम जीतती है, सीरीज एक एक से लेवल, फिर बकिया जो तीन टेस्ट मैचेस हैं तो वो तो हाउसफुल ही जाएंगे, जिस तरह यहाँ एडिलेड ओवल में जो हाउसफुल किया। ऑनेस्टली मैंने क्राउड को भी बहुत एंजॉय किया, क्रिकेट को भी मैंने बहुत एंजॉय किया।
आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर उनको भी शामिल कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। वलीउल्लाह वादी तीरा से कहिए क्या कहेंगे, और रेडियो सेट का वॉल्यूम भी प्लीज बंद कर दीजिए।
ताहिरुल्लाह बात कर रहा हूँ बाजे ओरिजिन से।
अच्छा जी, चलें जी ताहिरुल्लाह साहब कहिए क्या कहेंगे।
बस कहना चाहता हूँ कि जो एशियन सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है ना
जी जी,
ये बहुत अच्छा है। हम सुबह सवेरे उठते हैं, जब अपने फ्रेंडों को SMS करता हूँ, इसके बारे में मालूम जानने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है जी, बिल्कुल
बहुत मजा आ रहा है। मेरा फेवरेट टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है।
जी ऑस्ट्रेलिया को वोट देंगे, इसका
बहुत
मतलब
सारे ऑस्ट्रेलिया के फैन।
इंशाल्लाह जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा।
सवाल का जवाब देंगे आज, चैलेंज क्वेश्चन आपके सामने।
स्टीफन क्लेमेंस है न्यूजीलैंड का कप्तान।
कौन से कैप, किसकी बात की आपने?
न्यूजीलैंड का कप्तान है स्टीफन क्लेमेंस।
स्टीफन फ्लेमिंग को आपने कहा। चलें जी, ये हमने जवाब आपका नोट कर लिया।
हमारा दोस्त है गेमिंग में, उसको सलाम कहता
हूँ। वालेकुम सलाम, राइशा डे, शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर हमारे साथ थे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक है।
कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
ये अब्दुल्लाह करीम, बलूचिस्तान जिला रही की बेचारी से।
आपको खुश आमदेद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे
जी? अब्दुल्ला कहिए क्या कहेंगे।
मेरे भांजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ
सर। मैं प्रोग्राम बहुत सर्दी सुनता हूँ, हर वक्त आपका प्रोग्राम स्पोर्ट वाली बहुत सुनता हूँ। इस वक्त में इलाके में बहुत सर्दी आ गया, सर्दी के मौसम में भी जब से प्रोग्राम बहुत सर्दी सुनता हूँ।
तो आप सर्दी के मौसम में प्रोग्राम शौक से सुनते हैं, तो फिर आपको रजाई की जरूरत तो नहीं होती होगी?
नहीं नहीं सर।
अच्छा ठीक है, आप मौसम को भी और प्रोग्राम को आप इंजॉय करें, ठीक है?
इंशाल्लाह हर वक्त मैं सुनता हूँ, रेडियो मेरा साथ है, हर वक्त मैं सुनता हूँ।
रेडियो तो रेडियो से अच्छा दोस्त तो है कोई नहीं ना?
बिल्कुल
हाँ, मेरे दोस्त है घटना का करे, आपका दोस्त सारा स्टूडियो में दोस्त है, मेरा दोस्त है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। और टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला साथ साथ जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ बातों का सिलसिला भी जो है वो जारी रखेंगे।
नुमान आपके, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जहन में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी या इंग्लैंड की टीम जीतेगी या क्लोज टेस्ट मैच होगा?
देखिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी विशेष इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड शुड विन दिस मैच, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक उनका जो उनको प्रेशर उन पे है, ऑस्ट्रेलिया की टीम डाल रही है, और जिस तरीके से इंग्लैंड काफी दबाव में है, तो ये मेरी एक ख्वाहिश है,
विश है, ख्वाहिश
जी बिल्कुल, कि जोय रूट जो है वो सेंचुरी करें, और उनको साथ साथ टेल एंडर्स की तरफ से भी 20-20 25-25 रन का अगर पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी बनती रही तो उम्मीद है कि ये जो
जो रूट ने सेंचुरी की नोमान, और वोक्स ने, मोइन अली ने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने, ओवरटन ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया, तो यू नेवर नो कि इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच जीत जाए। वंस अगेन अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीत जाती है तो ये सीरीज अलाइव का लफ्ज फिर छोटा पड़ जाएगा। अलाइव तो रहेगी कि फिर बकिया तीन जो टेस्ट मैचेज हैं उसका फैसला क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त फिर ये एशेज सीरीज होगी, क्योंकि दोनों टीमें हम पलना है
जी। फिर जोय रूट को बस जो मेन खतरा है वो मिचेल स्टार्क की बॉलिंग से होगा, क्योंकि स्टार्क इतने ज्यादा दबाव में उनको ला के कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि निपी एक्शन बॉल करते हैं और
यॉकरलैंड पर गेंद पर यॉकर स्विंग करता है जी। और कमिंग्स को आज मैं देख रहा था, मलान को इतना उसने हिट किया उसकी बॉडी को, कभी उसके बैटिंग ग्लव पे वो गेंद मार रहा है, कभी उसकी चेस्ट पर, कभी उसकी थाई पर, कभी बाउंसर, कभी हेड पर गेंद मार रहा है। तो इस सीरीज में हमें ये चीज भी, वर्बल जो मामला है दोनों टीम्स के या एक्स क्रिकेटर्स के, वो तो हमें सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज भी ग्राउंड में हमें देखने को मिलेगी।
यानी जख्म खा के और चोटे खा के ही जो है वो टीम है
वो जीतेगी या हारेगी, ये देखना होगा।
चलिए ठीक जी। और इंतजाम साहब, हम बात करेंगे अब
श्रीलंका और इंडिया के मैच के हवाले से, क्योंकि श्रीलंका काफी मुश्किलात का शिकार है। और क्योंकि कहीं पर उसको बहुत ज्यादा रन्स मिल रहे हैं और कहीं पे माहौलियाती आलूदगी भी जो है उससे भी काफी टीम डिस्टर्ब हुई है और वहां पर जाके काफी मुश्किलात हैं। श्रीलंका जो है ताजा तीन जो स्कोर कार्ड है वो आपको बता दें, 373 जो है रन जो है वो श्रीलंका ने बनाए हैं और 379 रन उनको मजीद जो है वो चाहिए 7 विकेट पर।
जी 410 रन का टारगेट है जी यहाँ पे जो कि इंडिया ने सेट किया है और श्रीलंका की जो पोजीशन है बहुत डाउन है जी, 31 पे 3 उनके विकेट गिर चुकी हैं दूसरी इनिंग्स में और इस तरह से ये दिखाई देता है कि एक बार फिर जो भारत जो है ये सीरीज जीत कर अपने जो सीरीज टैली है उसको एक वर्ल्ड लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तकरीबन पिछले 2 से 3 सालों के दौरान इंडिया की टीम कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है।
ये भी एक रिकॉर्ड है नुमान
जी,
बिल्कुल ठीक बात की। और जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका ये जो टेस्ट मैच जारी है, ऑनेस्टली वन साइडेड ये टेस्ट मैच शुरू में दिखाई दे रहा था लेकिन श्रीलंकन टीम ने पहली इनिंग्स में थोड़ा सा रेजिस्ट किया, मुकाबला किया। स्पेशली जो चंदीमाल है उसने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, 164 रन उसने बनाए और मैथ्यूज ने 111 रन बनाए, लेकिन ये दो बैट्समैन थे जिन्होंने इम्प्रेसिव बैटिंग की, बकिया किसी बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की नहीं है।
और एहतान साहब सेकंड इनिंग में हम देखें ना तो करुणा रत्ने 13 रन बना के आउट हुए हैं, समारा विक्रमा 5 रन बनाकर आउट हुए हैं और उसके अलावा लखमल जो हैं उन्हें जडेजा ने बोल्ड किया, तो अब नाइट वॉचमैन हैं। अभी
लखमल तो नाइट वॉचमैन आया था और वो आउट हो गया
जी, और एंजेलो मैथ्यूज ने फिर उनको ज्वाइन किया क्योंकि जाहिर उसका कुछ खेल बाकी था और अब जो डिसल्वा हैं वो 13 रन पर नॉट आउट हैं, तो कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही
है बिल्कुल। और ये जो रन चेस का प्रेशर होता है नुमान, ये जहन में रखिएगा कि चौथी इनिंग्स में 250 से प्लस जो रन होते हैं उनको चेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं समझता हूं श्रीलंकन टीम पर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है और साफ दिखाई दे रहा है कि अगर श्रीलंका के एक दो बैट्समैन बड़ी इनिंग्स ना खेले तो ये टेस्ट मैच भी इंडिया की टीम जीत जाएगी। और विराट कोहली का ये इस सीरीज का ये लास्ट टेस्ट है, उसके बाद वो रेस्ट ले लेगा, रोहित शर्मा फिर कप्तानी करेंगे और फिर विराट कोहली का ये कहना है कि वो फोकस करेगा साउथ अफ्रीका का जो टूर है वो बड़ा जबरदस्त टूर है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर है वो इंडियन क्रिकेट के।
शाम साहब जैसे हम कह रहे थे एशेज में बारिश जो है उसके लिए दुआएं शायद मांगे अगर इंग्लैंड की टीम बहुत मुश्किल में हो, तो यहां श्रीलंकन को हम सोच रहे हैं कि वो अगर स्मोक के लिए मजीद विश करें कि इतना स्मोक हो जाए कि वो खेल मुमकिन ही ना हो
सके, तो
यही दो चीज है, यही चीज है जो श्रीलंका को बचा सकती है।
यू आर राइट। और स्मोक की वजह से हमने कल भी बात की थी राहत के, क्रिकेट की हिस्ट्री में जहां तक मुझे याद है या नुमान को याद है कि ये पहला मौका था कि प्लेयर्स ने मास्क पहने हैं और जो मेरी इत्तला थी कि जो ड्रेसिंग रूम है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाकायदा रखे गए थे क्योंकि प्लेयर्स को जो है वो सांस लेने में काफी मुश्किल आ रही थी।
जी मजीद खबरों को शामिल करेंगे लेकिन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:30 हो चुके हैं और इस वक्त सुना करते हैं आप अहम खबरों का खुलासा, तो आइए सुनते हैं।
منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری خطے کی خوشحالی کا منصوبہ ہے کیونکہ یہ علاقائی روابط اور تعاون کا منصوبہ ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ کراچی شپ یارڈ دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کا راستہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی تازہ ریاستی دہشت گردی میں ضلع کلگام میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے عالمی سطح پر غذائی قلت میں کمی کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں پر سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا ہے۔
یہ تو تھا عام خبروں کا خلاصہ، یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल से सुनिए इतवार शाम 5:05 से 6 बजे तक खसूसी प्रोग्राम ए दुनिया के मुंसिफों। रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरें और उन पर तज़िये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
वेलकम बैक, रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है सांबा स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड आप सुन रहे हैं अपनी मेजबान राहत खान नुमान खान के साथ और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एहतिशाम उल हक, सीनियर तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। और सामिन, आज के दिन आपके लिए सेगमेंट पेश किया जा रहा है टॉप 10, और टॉप 10 में आज आप जिक्र सुनेंगे एक एजाज का, एक पहनावे का जो प्लेयर्स की शान है। तो आइए सुनते हैं नुमान खान की कलम से, नुमान खान की जुबानी टॉप 10।
खेलों की दुनिया में लेजेंड्स के बारे में जब भी जहां भी कोई बात होती है तो शायकीन के दिल बाग बाग हो जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट तेंदुलकर की हैसियत खेल में अपनी जगह उसी तरह कायम जैसे पहले थी। पिछले दिनों एक मैच में एक क्रिकेटर ने 10 नंबर की शर्ट पहन ली, जिस पर सोशल मीडिया में काफी लेदे हुई। शायकीन ने अपने गुस्से का इजहार खुलकर किया और कहा कि जो नाम तेंदुलकर के साथ जुड़ा है वो किसी और का कैसे हो सकता है। इसीलिए बीसीसीआई ने अब तमाम प्लेयर्स पर यह पाबंदी लगाई है कि वो ग्राउंड में 10 नंबर की शर्ट पहनकर मत आए। तेंदुलकर के साथ साथ क्रिकेट में जिस खिलाड़ी ने इस शर्ट की रौनक को 4 चांद लगाए उनमें सरफहरिस्त पाकिस्तान से बूम बूम आफरीदी हैं। 10 नंबर की शर्ट इंग्लैंड के गैरेट जोन्स, न्यूजीलैंड के क्रैक मिलन भी पहन चुके हैं। क्रिकेट में तो इस नंबर का इतना ज्यादा क्रेज नहीं, मगर फुटबॉल वर्ल्ड में शर्ट नंबर बहुत मैटर करता है। तो फिर आइए सुनते हैं टॉप 10 प्लेयर्स जिनके नाम के साथ ये ऑनर यानी 10 नंबर की शर्ट जुड़ी है। नंबर 10 पर हैं इटालियन टीम के ग्लेडिएटर और गोल्डन बॉय ऑफ रोमा का खिताब पाने वाले फ्रांसिस्को टोटी। एक अरसे तक एआर रोमा की नुमाइंदगी करने वाले टोटी की जर्सी का नंबर 10 है। टोटी फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत नुमाया पोजीशंस पर खेलते रहे हैं, एज ए स्ट्राइकर, एज विंगर, जहां खेले खूब खेले। 40 साल टोटी अब एज ए सीनियर प्लेयर एएस रोमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 नंबर की जर्सी पहनने का हक अदा करने वाले टोटी को हमेशा फुटबॉल वर्ल्ड वेलकम करती रहेगी। نمبر 9 پر ہیں اسکاٹش ٹیم سے لومن. اسکاٹش ٹیم کے سابقہ مینیجر سر میٹ بسپے نے انہیں ملک کا سب سے بہترین کھلاڑی قرار دیا. 1964 میں فٹ بال کا سب سے بڑا اعزاز بیلن ڈی اور جیتنے والے لومن بھی 10 نمبر کی جرسی پہننے والے پلیئرز کی صف میں شامل ہیں. لومن نے 7 جوڑا مینچسٹر یونائیٹڈ کے ماضی کے سٹارز گریٹ بیکس اور سر بوبی چارلٹن کا. ان تینوں نے مینچسٹر یونائیٹڈ کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. نمبر 8 پر وہ نام جسے 1993 میں فیفا بیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. اٹلی کے عوام کے دلوں میں بسنے والے کروڑوں فینس کی پسندیدہ شخصیت روبرٹو باگیو. اپنے کلب اور ملک کے لیے کھیلنے والے روبرٹو باگیو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں اور رہیں گے. 200 سے زائد کلب گولز کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی میچز میں 27 گولز کرنے کا ملکی اعزاز بھی انہی کے نام کے ساتھ ہے. نمبر 10 کا اعزاز رکھنے والی جرسی کو پہن کر روبرٹو باگیو نے یوونٹس اور انٹر میلان کے لیے زبردست پرفارمنس دی ہیں. اپنے پورے کریئر کے دوران باگیو نے سیکنڈ اسٹرائکر کا رول نبھایا یا پھر اٹیکنگ مڈ فیلڈر کے روپ میں انہیں شائقین نے بہت بار کھیلتے ہوئے دیکھا. روبرٹو باگیو ہر پلیئر کا ایک برا دن ہوتا ہے. فٹ بال میں لاتعداد کامیابیاں سمیٹتے روبرٹو باگیو کو وہ پینلٹی کک بھی یاد ہوگی جو ان کی ٹیم کو 1994 کا ورلڈ کپ نہ جتوا سکی. اس بڑے میچ میں ہوئی چوک اور باگیو کی کک مس اور برازیل بن گیا ایک بار پھر فٹ بال کا عالمی چیمپئن. نمبر 7 پر وہ نام جسے فرانس کا سب سے بہترین فٹ بالر کہا جا سکتا ہے. کھیل میں جدت لانے والے یہ ہیں غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک کھلاڑی مائیکل پلاٹینی. دس نمبر کی جرسی پہن کر فرانس کی شان بڑھانے والے مائیکل پلاٹینی نے اپنے کلبز ایورٹین اور یوونٹس کی طرف سے پرفارم کرتے ہوئے کھیل کو بلندیوں تک پہنچا دیا. مائیکل پلاٹینی کا سب سے بڑا یادگار لمحہ تھا 1981 میں فرانس کو یورپین چیمپئن شپ کا تاج پہنانا. فٹ بال کا اعلی ترین اعزاز بیلن ڈی اور مسلسل 3 سال 1983 سے 1985 تک اپنے نام کرنے والے اس گریٹ فرینچ مین کو 1999 میں فرینچ پلیئر آف دا کنٹری کا ایوارڈ بھی دیا گیا. مائیکل پلاٹینی ہمیشہ ایک زبردست مڈ فیلڈر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. اپنے سحر انگیز کھیل کے 22 فرینچ فٹ بالر کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھنے والے ہیرو نے صحیح معنوں میں 10 نمبر کی جرسی پہننے کا حق ادا کر دیا. دس نمبر کی شرٹ کو اپنا پہناوا بنانے والے اب جس فٹ بالر کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. برازیل کی ٹیم کے لیے زبردست پرفارم کرنے والے 3R میں سے یہ ہیں 1R یعنی روبرٹو کارلوس, رونالڈو اور رونالڈینو میں سے یہ ذکر ہے رونالڈینو کا. ینگسٹرز میں بے انتہا مقبول رونالڈینو اپنی فٹ بال اسکلز اور ڈریبلنگ کے باعث بے پناہ شہرت رکھتے ہیں. کھیل میں زبردست ٹرکس کے ساتھ جان ڈالنے والے رونالڈینو نے بارسلونا کے ساتھ ناطا جوڑتے ہی 10 نمبر کی شرٹ کو زیب تن کیا. رونالڈینو 2004 اور 2005 میں فیفا بیسٹ پلیئر آف دا ایوارڈ جیت کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے وقار میں بھی اضافہ کرتے چلے ہیں. 2002 میں برازیل کو عالمی کپ کا تاج پہنانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. رونالڈینو ہمیشہ دوسرے پلیئرز کی طرح زیادہ گولز تو اسکور نہیں کر سکے مگر اپنے کھیل کے کمالات اور فٹ بال کے ساتھ مختلف موومنٹس کرتے برازیلین اسٹار سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان رہے ہیں. رونالڈینو ہیں ہماری اس فہرست میں نمبر 6 پر. اور سامین نمبر 5 پر برازیل سے ایک اور بڑا نام وائٹ پیلے کا خطاب پانے والے زیکو. اپنی بریلینٹ فنیشنگ کے باعث 1970 کے اواخر اور 1980 کے دہائی میں انتہائی غیر معمولی کھیل پیش کرنے والے زیکو کو ہر فٹ بال لور جانتا ہے۔ فٹ بال کا اعلیٰ ترین اعزاز بیلن ڈی اورز مسلسل 3 سال تک اپنے نام کرنے والے اس گریٹ پلیئر کو سبھی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سامن، گریٹ پلیئرز کی یہ فہرست ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے ان پلیئرز کی جانب کے جو ٹاپ 10 کی اس فہرست میں ٹاپ 3 پوزیشنز پر ہیں، اور ان میں سے وہ نام کہ جو کہ نمبر 3 پر ہے، یہ ہیں مائیکل پلاٹینی کے ساتھ ایک اور کہ جن کا نام ہے پیلے۔ پیلے کے بارے میں مائیکل پلاٹینی نے ایک بار کہا تھا کہ پیلے کے ساتھ کھیلنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اور دنیا کے کھلاڑی کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ پیلے دنیا کے فٹ بال کے پہلے سپر سٹار جن کے اعلی کھیل، سمجھ بوجھ اور انتہائی لگن نے انہیں ون آف دا بیسٹ فٹ بالر کا ایوارڈ دیا۔ برازیل جیسی سپر پاور ٹیم کے سپر پلیئر پیلے کو ایک بہت بڑا اعزاز تاریخ میں ملا ہے۔ 3 ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے والی ٹیم کے ممبر ہونے کے ناطے سے ان کی ہستی مسکراتی تصاویر سب کو یاد ہیں۔ جس طرح 1960 اور 1970 کی دہائی میں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کی کلاس ان میچ تھی، ایسے ہی 1970 اور 1980 کی برازیلین ٹیم کی فٹ بال کا کھیل سب سے ہی الگ تھا۔ فٹ بال ورلڈ کی انتہائی قداور شخصیت جن کے تلسماتی کھیل نے ایک عرصے تک شائقین کے دلوں پہ راج کیا، کھیل کو خیر بات کہنے کے بعد مختلف عہدوں پر بھی پیلے فائز رہے۔ 10 نمبر کی جرسی پہنے پیلے کو کھیلوں کی دنیا میں کنگ آف فٹ بال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب لیے چلیں گے آپ کو نمبر 2 پلیئر کی جانب، اور نام ہے ان کا ڈیاگو آرمنڈو میراڈونا۔1986 کی ٹرافی فضا میں لہرانے والے ون اینڈ اونلی ڈیاگو آرمنڈو میراڈونا، وجہ شہرت فٹ بال سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ میراڈونا اپنی پوری ذات میں ون مین آرمی کہے جا سکتے ہیں۔ 1986 کے ورلڈ کپ میں ان کا یادگار گول ابھی بھی سب کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ 1986 میں انگلینڈ کے خلاف ان کا سکور کیا ہوا گول گول آف سینچری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میراڈونا کی ڈریبلنگ کو سمجھنا اور اسے ٹیکل کرنا بہت مشکل تھا۔ نپولی اور بارسلونا جونیئر کی اور بوکا جونیئر کی طرف سے کھیلتے ہوئے 57 سالہ ارجنٹائنی اسٹرائکر نے مجموعی طور پر 109 گول اسکور کیے۔ میراڈونا ایک عہد کا نام ہے۔ ان دونوں بڑے کلبس کے ساتھ ساتھ سیویلیا، نیو ویلز اولڈ بوائز اور بارسلونا کی طرف سے بھی میراڈونا اپنے کھیل کا جادو دکھا چکے ہیں۔ ان دنوں یو اے میں فجیرہ کی ٹیم کے ساتھ کے طور پر مینیجر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حال ہی میں فیفا نے ورلڈ کپ 2018 کے ڈراز کی تقریب میں بھی میراڈونا کو مدعو کیا اور وہ وہاں جلوہ افروز تھے۔ اور سامعین، نمبر 1 پر پلیئر جس نے 10 نمبر کی جرسی کو ایسی بلندی پر پہنچایا کہ ہر کھلاڑی اس عروج کو پانے کی تمنا کرتا ہے، یہ ہے ارجنٹائن ہی سے ایک اور ہونہار سپور، ون اینڈ اونلی لائنل میسی۔ آج کل سب کے دلوں پہ اور ذہنوں پہ چھانے والے لائنل میسی کو ہر ملک کا باشندہ جانتا ہے۔ میسی کی 10 نمبر کی شرٹ سب کی آنکھوں میں بس گئی ہے۔ فٹ بال ناقدین کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے بغیر میسی کا کھیل ادھورا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اتنے اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں کہ جس سے کھیل میں ان کی لگن، دلچسپی اور محنت اپنی جگہ قائم ہے۔ فٹ بال ورلڈ کے وہ پلیئر جنہوں نے 5 مرتبہ بیلر ڈی اور کا اعزاز اپنے نام کے ساتھ سجایا، میسی مشہور ہے بارسلونا کے لیے، 2004 سے لے کر اب تک 13 سال کی رفاقت میں بارسلونا کے ساتھ 396 میچز میں 362 گول اسکور کیے، جبکہ اپنے ملک کی جانب سے 123 میچز میں 61 گول ارجنٹائن کی شرٹ پہنتے ہوئے لائنل میسی نے اسکور کیے۔ یہ تھے وہ 10 بہترین پلیئرز جن کے نام کے ساتھ 10 نمبر کی شرٹ کا آنر موجود ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں یہ اعزاز ایوارڈ ہی ہیں جو پلیئر کو حوصلہ، قوت اور آگے بڑھنے کا جذبہ دیتے ہیں۔ 10 نمبر کی جرسی نام ہے ایک اعزاز، ایک تمغے اور ایک ایوارڈ کا۔
ٹاپ 10 سامعین آپ نے سنا نعمان خان کی زبانی، یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام سپورٹس ورلڈ آپ سن رہے ہیں۔ اپنی میزبان راحت خان نعمان خان اور سینئر تجزیہ کار اسپورٹس ایکسپرٹ احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ سر، انڈر 19 اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بڑے ہی نئے چہرے جو ہیں متعارف کروائے گئے ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے، پہلا میچ 27 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ ٹیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ٹیم ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، جو نام شامل کیے گئے ہیں وہ مکمل زبردست میچ کھیلیں گے ان کے ساتھ؟
راج، یو آر رائٹ، اور آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جو ہے 13 جنوری سے اس کا آغاز ہوگا نیوزی لینڈ میں، اور 27 سے 29 تاریخ تک ورسز آسٹریلیا ایک سیریز جو انڈر 19 کی شیڈول ہے یا طے ہے۔ تو اب جو اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے اس کے بارے میں میں سب کے ساتھ نام شیئر کیے دیتا ہوں۔ محسن خان، عمران شاہ، زید عالم، روہیل نذیر وکٹ کیپر اور وائس کیپٹن ہے، محمد طہا، عماد عالم، علی زریاب، سعد خان، حسن خان کیپٹن ہے، موسیٰ خان، شاہین شاہ، منیر ریاض، ارشد اقبال، محمد علی اور سلیمان شفقت۔ یہ وہ اسکواڈ ہے، 15 رکنی اسکواڈ جس کا اعلان جو ہے باسط علی نے کیا ہے۔
آپ نے ورلڈ کپ کی ڈیٹ بتائی ہے ابھی جو 3 جنوری کو شروع،
13 جنوری
کو، لیکن میں جو بات کر رہی ہوں 27 دسمبر کو جو میچ ہو رہا ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ، اس سے پہلے جو ہے 3 میچز کی سیریز جو ہے وہ یہ اسکواڈ جو ہے وہ مقابلہ کرے گی آسٹریلیا کے ساتھ۔ وہ پہلا میچ جو ہے وہ 27 دسمبر کو، دوسرا 29 کو، تیسرا 31 دسمبر کو جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔
یو آر رائٹ، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز جو ہے وہ ورسز آسٹریلیا پاکستان کی انڈر 19 کھیلے گی،
بالکل،
اور ان کی ڈیٹس آپ نے بتا دی ہیں، اور یہ بہت ٹف سیریز ہوگی راحت، ورسز آسٹریلیا جو سیریز ہوگی انڈر 19 کی بہت ٹف سیریز ہوگی، اور اس کے بعد آئی سی سی ورلڈ کپ جو ہے وہ 13 جنوری سے شروع ہوگا نیوزی لینڈ میں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ 3 ایک روزہ میچز کی سیریز پاکستان انڈر 19 کھیلے گی، ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے ورسز آسٹریلیا، اس سے ہی کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کی ٹیم کہاں سٹینڈ کر رہی ہے۔ لیکن آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ نئے چہرے، نوجوان پلیئرز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے،
تو اعتماد کا اظہار کیا گیا،
بالکل یہی وہ انڈر 19 کے پلیئرز ہیں جو پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے، جو بیٹسمین ہے ود دا بیٹ، جو بالر ہے ود دا بال، اور جو آل راؤنڈر ہے वो बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। कप्तान मूसा खान जो है, जो हसन खान है, वो भी इम्प्रेसिव कप्तानी करने की कोशिश करेगा, ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको तमाम लोग पाकिस्तान में देख सकें। जो 20-22 करोड़ अवाम है वो भी देखेगी, और जो सिलेक्टर्स हैं वो भी इसको मॉनिटर करेंगे, और फिर यही अंडर 19 जो स्क्वाड है इसमें से राहत जो प्लेयर्स या जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो फिर लाइमलाइट में आ जाएंगे, और वो फिर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है, एक आरजू होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान की कैप पहनूं, पाकिस्तान की टाई पहनूं, पाकिस्तान का ब्लेजर पहनूं। तो बड़े ऑनर की बात होती है, बड़े एजाज की बात होती है कि आपका ताल्लुक ख्वाह किसी भी मुल्क से है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे। तो मैं समझता हूं कि देखना यह है कि ये जो अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं, जो स्क्वाड है, इनमें से कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम वर्ल्ड कप में देखेंगे। और ये जो वर्ल्ड कप नाम होता है राहत और नुमान, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रेशर होता है। चैंपियंस ट्रॉफी का नाम प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का नाम प्रेशर होता है। तो मैं समझता हूं कि अब प्रेशर में पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जो है, जिन्हें मैं यही कहता हूं और आप भी स्माइल दे रही हैं, नुमान भी, बच्चे हैं ना ये, हमारे लिए तो बच्चों की तरह, तो ये हमारे बच्चे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं ये देखना होगा। जो मौजूदा पाकिस्तान की नेशनल टीम है इसमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अंडर 19 से जो है ये ऊपर है, स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर है। तो ये जो वर्ल्ड कप है इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अफादियत है, और इस वर्ल्ड कप में देखना यह है कि हमारी टीम कहां स्टैंड करेगी, हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात अपनी टीम के साथ। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने माजी में भी राहत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, तो लेट्स होप के पाकिस्तान की टीम जो है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करे।
जी, ऑस्ट्रेलिया से आखिरी मैच 31 दिसंबर को खेलने के बाद जो है पाकिस्तानी ये स्क्वाड जो है ये न्यूजीलैंड का मुकाबला भी करेगा वर्ल्ड कप से पहले, जो है एक इम्तहान। इन
आप जो समझ लें कि एक तरह से प्रैक्टिस मैच है।
3 को पहला मैच है और 5 को दूसरा मैच है जनवरी को, और मेजबान टीम के साथ 2 मैचेस जो हैं वो ये खेलेगा।
अब इसका मतलब राहत ये हुआ कि 5 मैचेस इन्होंने खेलने वर्ल्ड कप से पहले,
बिल्कुल
3 ऑस्ट्रेलिया से, 2 न्यूजीलैंड।
फिर तो तैयारियां इनकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए।
ऑनेस्टली ये दोनों टीम्स बड़ी स्ट्रांग टीम्स हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बड़ी बैलेंस्ड टीम है, बड़ी स्ट्रांग टीम है, न्यूजीलैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये 5 मैचेस खेलने के बाद और इन 5 मैचेस में जो पाकिस्तानी अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस होगी तो उससे भी हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा।
यहां पे एक और बात शामुल हक साहब बताते चलूं कि 7 दिसंबर को ये सभी प्लेयर जो हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो है त्रिवेदी कैंप को ज्वाइन करेंगे
लाहौर में। जी बिल्कुल, ये वहां पर 7 दिसंबर को जमा होंगे और वहां पर इनका एक त्रिवेदी कैंप लगेगा। बिल्कुल ठीक आपने खबर दी है, बड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं आज आप। और वहां पर एकेडमी में आपको मालूम है जो नेशनल टीम के प्लेयर्स होते हैं वो भी वहां पर जाते हैं, मुश्ताक और मुदस्सर नजर वहां पर मौजूद है जो प्लेयर्स की नोक पलक जो है वो दुरुस्त करते हैं। तो ये अच्छी बात है, आकिब जावेद भी हेल्प आउट करते हैं, ये अच्छी बात है।
नुमान खान कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जल्दी से मौके से फायदा उठाते हैं। एक बात और मैं आपसे पूछती चलूं, शादाब खान जो है उनके साथ भी कुछ मसला जो है वो सामने नजर आ रहा है। दिन ब दिन हमारे प्लेयर जो है वो इंजरीज का शिकार होते जा रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। तो ये क्या वजूहात है कि एक से एक प्लेयर जो है वो इंजरी में मुब्तला हो रहा है?
योर राइट, राहत के इमाद वसीम के हवाले से भी खबर ऐसी ही चल रही थी,
उससे पहले अजहर टाइम तक जो है हो रहे हैं,
उनके ओडीआई स्क्वाड में चांसेस हैं कि वो वापस आ जाएंगे। अब शादाब के हवाले से खबर,
राहत कॉल है प्रोग्राम में।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपकी कैसा हाल है?
कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
मैं लरिया से नेमतुल्लाह मिरानी अर्ज कर रहा हूं। मैं
जी नेमत,
नुमान खान को भी मेरा दिल से कह रही है अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
और सैयद शामिल हाथ से मैंने बहुत सी बातें करनी है, इसने मेरा इतना दिल दुखाया है ना, गम के आंसू रो रहा है वो मेरा दिल।
अच्छा, मैंने क्या ऐसा कर दिया मेरे भाई कि आप का दिल?
नहीं, ये कुछ कर दिया मैंने आपको, बंगले में जगह दी है।
अच्छा,
40 साल लगे बंगले को बनाने के लिए, तैयारी करने को, उसे बनाया और आपको जगह दी।
ठीक,
आपने तो ऐसा उसमें अंदर जाके बाहर भी नहीं निकले, कितने साल हो गए मिट्टी नहीं की। नहीं, मैंने आपको बात आपको समझ नहीं आएगी, मैंने आपको, मैं आपने दिल में जगह दी है।
आपकी मोहब्बत है, आपका खलूस है, आप लोगों का प्यार है, जो आप उससे अमूमन बात करते हैं कि मैं कमेंट्री क्यों नहीं करता। तो मैं,
मेरा दिल इतना दुख रहा है ना काम में हमारे किधर गए हैं वो
इतनी
मसरूफ आपकी है, हम भी आपको प्यार करने वाले हैं।
आपकी बहुत मोहब्बत, वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुने ना,
आप यकीन नहीं कर सकते यार, ये लोग
शाम साहब की भी बात सुने,
मेरी बात भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग
जितनी आप वादा करें,
आपने जो बात की है बहुत खुलूस से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बात की है, और आप सब लोग ही मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, मैं आप सबका बड़ा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ऑन एयर मैं एक बात बता रहा हूं कि जब कमेंट्री होती है, जब मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कमेंट्री के लिए जाऊंगा ना, जब मुझे बुलाया नहीं जाएगा तो मैं खुद से कैसे चला जाऊंगा कमेंट्री के लिए। अब आपको क्लियर हो गया
जी, बिल्कुल राहत कोशिश करती
है। लफ्जों में जो है तशाम साहब ने अपने जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझाई है, यकीन समझ चुके होंगे।
कोशिश होगी कि एक और कॉल हम अगर
आज के प्रोग्राम के लास्ट कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं, क्योंकि जवाब हम तक नहीं पहुंचा अभी तक।
जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से, जल्दी से बात कीजिए।
कमाल राजगोल बोल रहा हूँ, आजाद कश्मीर ममताजर आपसे।
आजाद कश्मीर से
जी, खुशामदीद कहेंगे आपको, कहिए क्या कहेंगे।
थैंक यू, बहुत तुशामुल हक साहब की आवाज़ आई तो कॉल कर ली आपको,
बड़ी मोहब्बत है।
सलाम कहना चाहता हूँ, मुझे कमेंट्री वगैरह ये नहीं सुनाते हैं, तो अगर इनको नहीं डलाता कोई तो बेट इकता चल जाया करे, हमें जरूरत है आपकी आवाज की।
अच्छा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आप सबको खुश रखे।
चलिए
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर थे,
लास्ट कॉलर
जी, लास्ट कॉलर थे, क्योंकि जवाब हम तक नहीं पहुंचा तो मैं उसमें भी कंफ्यूज हूँ कि नुमान जो है यकीनन आज के प्रोग्राम में जवाब नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे जवाब जो है ये यकीनन कल के प्रोग्राम में हो सकता है सामीन आप लोगों तक जवाब पहुंच जाए,
ये भी नुमान बताएंगे कुछ
जी। नुमान क्या है करना चाहते हैं?
नहीं रहा, थोड़ा सा हम और इंतजार कराएंगे।
अच्छा,
और वो जो एक आपकी सोचने की और खोजने की जो एक ख्वाहिश है उसको हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, जारी रहेगी, जारी रहनी चाहिए खेलों के हवाले से। आप मजीद, क्योंकि जब एक रिकॉर्ड को आप ढूंढते हैं तो उससे हवाले से और बहुत सारे रिकॉर्ड आपकी नजरों से गुजरते
जी,
हैं।
बिल्कुल जी। और इसके साथ ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है, हमारे सभी सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब आपका, बहुत सारे चाहने वाले आपके हैं और उम्मीद करूंगी कि जल्द ही वो आपकी कमेंट्री जो है वो सुने। और सामीन इसके साथ ही अपने मेजबान राहत खान को और नुमान खान को इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम के पैनल इंजीनियर थे नबीहा दिरिज़वी, कोऑर्डिनेटर थे मजहर जावेद, प्रोग्राम इंचार्ज थे जफर इकबाल, निगरानी आला थे जावेद खान जदून। खान को दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।